एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी तकनीक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो लगभग अदृश्य है, लेकिन हमारी डिजिटल जिंदगी की बुनियाद बन चुकी है, क्लाउड कंप्यूटिंग।
नमस्कार। और इस गहरी छानबीन के लिए हमने आधार बनाया है नयन बी रूपारेलिया के क्लाउड कंप्यूटिंग पर लिखे विश्लेषणों और जानकारियों को। ये सिर्फ तकनीकी बातें नहीं हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे ये अदृश्य शक्ति व्यवसायों, समाज और हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को, मतलब नए सिरे से गढ़ रही है।
बिल्कुल। कई बार लगता है कि ये सब तो सिर्फ इंजीनियरों के मतलब की बात है, लेकिन जरा सोचिए, सुबह ईमेल चेक करने से लेकर दिन में ऑनलाइन मीटिंग करने, शाम को अपनी पसंदीदा सीरीज स्ट्रीम करने तक हम लगातार क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
सही।
और व्यवसायों के लिए तो ये
सही बात है। ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की बात नहीं, छोटे स्टार्टअप्स भी आज इसकी बदौलत ऐसे काम कर पा रहे हैं जो पहले संभव ही नहीं थे।
हाँ।
तो ये समझना कि ये चीज असल में है क्या, कैसे काम करती है और इसका असली प्रभाव क्या है, ये आज की बातचीत का मकसद है। देखते हैं रूपारेलिया हमें इस सफर पर कहां ले जाते हैं।
तो सबसे पहले नयन बी रूपारेलिया के बारे में जानना दिलचस्प होगा। कौन है ये और क्यों उनकी बातें क्लाउड कंप्यूटिंग पर इतनी मायने रखती हैं?
देखिए, नयन बी रूपारेलिया एक अनुभवी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं। उनका अनुभव सिर्फ किताबी नहीं है, उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर जटिल सिस्टम्स को न सिर्फ डिजाइन किया है बल्कि उन्हें लागू भी किया है।
अच्छा।
इंटरप्राइज सिस्टम्स और क्लाउड पर उनका काम बहुत व्यावहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल है।
यानी वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते बल्कि जमीनी हकीकत से भी वाकिफ हैं। उनकी खासियत शायद यही है कि वे तकनीक की गहराई और व्यापार की जरूरतों के बीच एक पुल बनाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं समझाते कि क्लाउड क्या है या कैसे काम करता है।
सही।
बल्कि इस पर भी जोर देते हैं कि यह किसी कारोबार के लिए क्यों जरूरी है।
हाँ, और उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। वे मुश्किल तकनीकी विचारों को भी ऐसी भाषा में रखते हैं जो आईटी प्रोफेशनल से लेकर बिजनेस लीडर्स तक सबके लिए समझना आसान हो। वो क्लाउड को किसी जादू की तरह नहीं बल्कि एक तार्किक सिस्टम की तरह पेश करते हैं जिसके अपने नियम और फायदे हैं।
चलिए अब रूपारेलिया के विश्लेषण के सार पर आते हैं। उनकी जानकारियां क्लाउड कंप्यूटिंग को आसान बनाने का एक जबरदस्त प्रयास है। वो इसे भारी भरकम तकनीकी शब्दों के जाल से निकालकर समझने लायक कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में तोड़ते हैं।
बिल्कुल। और केंद्रीय विचार ये है कि क्लाउड सिर्फ इंटरनेट का अगला पड़ाव नहीं है, ये कंप्यूटिंग संसाधनों को देखने, इस्तेमाल करने और मैनेज करने के तरीके में एक बुनियादी, मतलब फंडामेंटल बदलाव है। रूपारेलिया इसे आईटी के औद्योगीकरण से जोड़ते हैं। जैसे बिजली के लिए अब हर कोई अपना पावर प्लांट नहीं लगाता।
सही।
बस ग्रिड से कनेक्शन लेता है और इस्तेमाल के हिसाब से बिल भरता है।
ये उपमा बहुत सटीक है। पारंपरिक आईटी में यही तो दिक्कत थी, आपको पहले से अंदाजा लगाकर भारी भरकम सर्वर, स्टोरेज सब खरीदना पड़ता था।
हाँ, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं।
बिल्कुल, कैपेक्स।
फिर चाहे उनका पूरा इस्तेमाल हो या ना हो, और कोई नई सर्विस शुरू करनी हो तो महीनों लग जाते थे।
और क्लाउड इसी का हल देता है, स्केलेबिलिटी यानी जरूरत पड़ने पर क्षमता तुरंत बढ़ा लेना, इलास्टिसिटी यानी मांग कम होने पर क्षमता घटा लेना,
राइट। लागत प्रभावशीलता, क्योंकि आप जितना इस्तेमाल उतना भुगतान ओपेक्स मॉडल करते हैं, और सबसे बढ़कर अभूतपूर्व फुर्ती, मतलब एजिलिटी, आप हफ्तों या महीनों के बजाय मिनटों में संसाधन तैयार कर सकते हैं।
तो रूपारेलिया हमें एक तरह की यात्रा पर ले जाते हैं, क्लाउड की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी परिभाषा क्या है, जैसे निस्ट के अनुसार।
हाँ, निस्ट।
इसके अलग अलग सेवा मॉडल IaaS, PaaS, SaaS और परिनियोजन मॉडल पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्या है, और कौन सी मुख्य तकनीकें जैसे वर्चुअलाइजेशन इसे संभव बनाती हैं। साथ ही सुरक्षा और भविष्य के रुझानों पर भी बात करते हैं।
ठीक है, तो इस यात्रा का पहला पड़ाव क्लाउड की जरूरत ही क्यों महसूस हुई, पारंपरिक कंप्यूटिंग में ऐसी क्या, मतलब, सीमाएं थी?
जैसा हमने अभी बात की, पारंपरिक मॉडल जैसे मेनफ्रेम या क्लाइंट सर्वर में सबसे बड़ी चुनौती थी शुरुआती निवेश।
हाँ, वो कैपेक्स वाली बात।
हाँ, कंपनियों को महंगे हार्डवेयर खरीदने पड़ते थे, उन्हें रखने के लिए जगह चाहिए होती थी और उन्हें चलाने के लिए विशेषज्ञ लोग। ये सब बहुत खर्चीला और धीमा प्रोसेस था,
और संसाधनों का इस्तेमाल भी बड़ा, मतलब, इनएफिशिएंट था। मान लीजिए आपने दिवाली सेल के लिए बहुत सारे सर्वर खरीद लिए, पर बाकी साल वो खाली पड़े रहते हैं।
सही।
या फिर कम खरीदे और सेल के दिन आपकी वेबसाइट बैठ गई, दोनों ही सूरतों में नुकसान।
यहीं पर क्लाउड की वो पांच आवश्यक विशेषताएं आती हैं
जिन्हें NIST मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने परिभाषित किया है।
हाँ।
ये सिर्फ लिस्ट नहीं बल्कि क्लाउड की असल ताकत बताती हैं। पहली, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यानी बिना किसी इंसान की मदद के उपयोगकर्ता खुद ही जरूरत के हिसाब से संसाधन ले सकता है।
अच्छा, मतलब खुद ही प्रोविजन कर सकते हैं।
बिल्कुल। दूसरी, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, सेवाओं तक इंटरनेट के जरिए कहीं से भी किसी भी डिवाइस से पहुंचा जा सकता है। फिजिकल मशीन पे हो रहा है, बस उन्हें संसाधन मिल जाते हैं।
चौथी, रैपिड इलास्टिसिटी, जरूरत के हिसाब से क्षमता को बिजली की तेजी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये लगभग असीमित क्षमता का एहसास देता है।
वाओ।
और पांचवी, मेजर्ड सर्विस, आप कितना संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज को नापा जाता है, इसी से वो पे एज यू गो मॉडल संभव होता है।
समझ गई, तो क्लाउड सिर्फ किसी और का कंप्यूटर नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
ये सेवा देने का एक बिल्कुल नया, लचीला और ज्यादा प्रभावी तरीका है।
एकदम सही, बुनियाद समझ आ गए। अब उन मॉडलों की बात करते हैं जिनके जरिए ये सेवाएं मिलती हैं, IaaS, PaaS, SaaS। इनमें क्या अंतर है और कोई इन्हें कैसे चुने?
इन्हें एक स्टैक या परतों की तरह देखना सबसे आसान है। सबसे नीचे है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस।
इंफ्रास्ट्रक्चर,
हाँ, इसमें प्रदाता आपको कच्चा माल देता है, वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर एप्लीकेशन तक सब आपको संभालना है।
अच्छा, मतलब काफी कंट्रोल रहता है।
यहाँ नियंत्रण सबसे ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी। रूपारेलिया की उपमा याद है, जैसे कच्ची जमीन लीज पर लेना, मकान आपको खुद बनाना है, उदाहरण Amazon EC2।
समझ गया, तो अगला लेवल है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
हाँ,
यहाँ प्रदाता इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक पूरा प्लेटफॉर्म भी देता है।
हाँ,
ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, डेवलपमेंट टूल्स वगैरह। डेवलपर सीधे अपनी एप्लीकेशन बनाने पर फोकस कर सकता है, उसे निचली चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं।
अच्छा,
यहाँ नियंत्रण थोड़ा कम पर सुविधा ज्यादा। उपमा थी एक बनी बनाई वर्कशॉप किराए पर लेना जहाँ औजार वगैरह सब मौजूद हैं, उदाहरण गूगल ऐप इंजन।
और सबसे ऊपर है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ आपको सीधे इस्तेमाल करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर मिलता है इंटरनेट पर, जैसे जीमेल या सेल्सफोर्स।
हाँ, ये तो हम सब यूज करते हैं।
बिल्कुल, उपयोगकर्ता को न इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता न प्लेटफॉर्म की, बस इस्तेमाल करो। उपमा फर्निश्ड अपार्टमेंट किराए पे लेना जहाँ सब कुछ तैयार है। यहाँ नियंत्रण सबसे कम पर आसानी सबसे ज्यादा।
और इन तीनों मॉडलों के पीछे एक जादुई तकनीक काम करती है, वर्चुअलाइजेशन। रूपारेली इसे क्लाउड का इंजन कहते हैं।
वर्चुअलाइजेशन,
हाँ, ये सॉफ्टवेयर जिसे हाइपरवाइजर कहते हैं के जरिए एक भौतिक सर्वर को कई वर्चुअल मशीनों VMs में बांट देता है। हर VM अपना अलग OS चला सकती है।
अच्छा,
इसी से वो रिसोर्स पूलिंग और तेजी से संसाधन देने की क्षमता आती है।
हाँ, वर्चुअलाइजेशन ही हार्डवेयर के कुशल उपयोग की कुंजी है। पर सिर्फ यही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, आधुनिक नेटवर्क और स्टोरेज तकनीकें भी क्लाउड को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अब ये तो हो गया कि सेवाएं कैसे मिलती हैं, पर ये तैनात कहाँ होती हैं, यानी डिप्लॉयमेंट मॉडल्स।
हाँ, वो पब्लिक प्राइवेट वाले, इसमें भी विकल्प हैं। सबसे जाना माना है पब्लिक क्लाउड,
जैसे AWS, Azure।
हाँ, AWS, Azure, GCP जैसे बड़े प्रदाता चलाते हैं। सेवाएं इंटरनेट पर सबके लिए उपलब्ध है, यहाँ क्षमता विशाल है और आप इस्तेमाल के हिसाब से पैसे देते हैं।
फिर आता है प्राइवेट क्लाउड, ये सिर्फ एक संगठन के लिए होता है, चाहे वो उसे खुद चलाए या किसी और से मैनेज करवाए।
ओके।
यहाँ नियंत्रण और सुरक्षा ज्यादा होती है, खासकर संवेदनशील डेटा या रेगुलेशन की जरूरतों के लिए।
और इन दोनों का मिश्रण है हाइब्रिड क्लाउड। कंपनियां कुछ काम जैसे संवेदनशील डेटा प्राइवेट क्लाउड में रखती हैं।
अच्छा,
और बाकी जैसे वेबसाइट का ट्रैफिक संभालना पब्लिक क्लाउड पर। इससे दोनों के फायदे मिलते हैं। एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है क्लाउड बर्स्टिंग, जब प्राइवेट क्लाउड पर लोड बढ़ जाए तो अतिरिक्त लोड अपने आप पब्लिक क्लाउड पर चला जाता है।
अरे वाह, ये तो काफी स्मार्ट है।
हाँ, और एक कम्युनिटी क्लाउड भी होता है, जैसे एक जैसे मकसदों वाले कई संगठन मिलकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई रिसर्च कंसोर्टियम। लेकिन यहाँ सिर्फ मॉडल चुनना ही काफी नहीं, रणनीति भी चाहिए। जैसे क्या हमें सिर्फ एक क्लाउड प्रोवाइडर पर निर्भर रहना चाहिए?
वेंडर लॉक इन का खतरा।
बिल्कुल, या मल्टी क्लाउड अपनाना चाहिए? हमारा डेटा किस देश में स्टोर होगा, मतलब डेटा सॉवरेनिटी, ये सब फैसले संगठन की जरूरतों और नियमों के हिसाब से लेने होते हैं।
आपने नियंत्रण और सुरक्षा की बात की। ये क्लाउड में एक बड़ा सवाल या निशान रहता है, इस पर रुपारेलिया का क्या कहना है?
यहाँ रुपारेलिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले सिद्धांत पर जोर देते हैं, साझा जिम्मेदारी मॉडल, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल।
साझा जिम्मेदारी?
हाँ, इसे समझना बेहद जरूरी है। इसका सीधा मतलब है कि क्लाउड में सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ प्रदाता की नहीं है, ग्राहक की भी है।
अच्छा, ये कैसे बंटी होती है?
प्रदाता जिम्मेदार है क्लाउड की सुरक्षा के लिए, यानी उनके डेटा सेंटर, हार्डवेयर, नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, फिजिकल सिक्योरिटी वगैरह।
ओके।
और ग्राहक जिम्मेदार है क्लाउड में अपनी चीजों की सुरक्षा के लिए, यानी अपने डेटा, अपनी एप्लीकेशंस, कौन उन्हें एक्सेस कर सकता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सेवाओं को सही ढंग से कॉन्फिगर करने के लिए। एक छोटी सी कॉन्फिगरेशन गलती भी बड़े डेटा ब्रीच का कारण बन सकती है।
ओह, ये तो बहुत जरूरी बात है।
बिल्कुल। तो खतरे क्या हैं? डेटा चोरी, असुरक्षित API, पहचान की चोरी, सेवाओं को ठप करने वाले हमले, DOS। इनसे निपटने के लिए इंक्रिप्शन, मजबूत पहचान प्रबंधन, नियमित ऑडिट और नियमों जैसे GDPR, HIPAA का पालन जरूरी है। रुपारेलिया कहते हैं कि हमें सुरक्षा की पुरानी सोच, मतलब किले की दीवारें खड़ी करने वाली सोच,
पेरिमीटर सिक्योरिटी,
उससे आगे बढ़कर पहचान और डेटा पर केंद्रित होना होगा।
सुरक्षा के अलावा क्लाउड का एक और बड़ा आकर्षण उसका आर्थिक पहलू है, वो कैपेक्स से ओपेक्स का बदलाव।
हाँ, ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब कंपनियों को शुरुआत में करोड़ों रुपए सर्वर खरीदने में नहीं लगाने पड़ते, वो सेवा इस्तेमाल करती हैं और महीने या घंटे के हिसाब से बिल चुकाती हैं। IT एक खरीदी जाने वाली संपत्ति के बजाय बिजली, पानी जैसी उपभोग की वस्तु बन गई है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग।
इसके कई प्राइसिंग मॉडल हैं, जितना इस्तेमाल उतना भुगतान, या फिर लंबी अवधि के लिए कमिटमेंट करके छूट पाना,
रिजर्व्ड इंस्टेंस।
हाँ, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, या बहुत सस्ते में अतिरिक्त क्षमता खरीदना,
स्पॉट इंस्टेंस।
स्पॉट इंस्टेंस, लेकिन यहाँ एक मतलब पियज है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो जितना इस्तेमाल उतना भुगतान महंगा भी पड़ सकता है।
हाँ, बिल देखकर शॉक लग सकता है।
बिल्कुल। लागत नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी, ऑटोमेशन जैसे ऑटो स्केलिंग और संसाधनों को टैग करना जरूरी है।
क्लाउड पर ले जाना कितना मुश्किल है, इसकी क्या रणनीतियां हैं?
रुपारेलिया कई रास्ते बताते हैं। सबसे सीधा है रीहोस्टिंग, लिफ्ट एंड शिफ्ट, मौजूदा सिस्टम को बिना ज्यादा बदले क्लाउड पर वर्चुअल मशीन में डाल देना। यह सबसे तेज है, पर क्लाउड का पूरा फायदा नहीं मिलता।
अच्छा, इससे बेहतर विकल्प
रीफैक्टरिंग, एप्लीकेशन में थोड़े बदलाव करना ताकि वो क्लाउड की कुछ सेवाओं जैसे ऑटो स्केलिंग या मैनेज्ड डेटाबेस का इस्तेमाल कर सके।
ओके।
या फिर री आर्किटेक्टिंग, एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को बदलना, और सबसे एडवांस्ड है रीबिल्डिंग, एप्लीकेशन को पूरी तरह से क्लाउड नेटिव बनाना, जो क्लाउड की क्षमताओं का भरपूर फायदा उठाए।
तो मतलब लिफ्ट एंड शिफ्ट से लेके पूरा रीबिल्ड तक कई ऑप्शंस हैं।
हाँ, इनमें से कौन सा रास्ता चुनना है ये एप्लीकेशन की जरूरत, बजट और समय पर निर्भर करता है। लेकिन रुपारेलिया एक और बात पर जोर देते हैं, ये सिर्फ तकनीकी काम नहीं है, ये एक संगठनात्मक बदलाव भी है।
अच्छा, कैसे?
लोगों को नई स्किल सीखनी पड़ती हैं, प्रक्रियाएं बदलनी पड़ती हैं और सोच भी बदलनी पड़ती है। मतलब चेंज मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
सही बात है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलना काफी नहीं।
बिल्कुल। अब जरा क्लाउड की दुनिया के बड़े खिलाड़ियों और भविष्य की तरफ देखें।
हाँ, तीन नाम तो हावी हैं, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, जो सबसे पहले आया और सबसे बड़ा है, सेवाओं की रेंज भी विशाल है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, खासकर उन कंपनियों के लिए जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में हैं या हाइब्रिड क्लाउड चाहते हैं।
राइट।
और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP, जो डेटा एनालिटिक्स, AMI, L और Kubernetes में बहुत मजबूत माना जाता है।
रुपारेला नेटफ्लिक्स का उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पर शिफ्ट किया।
हाँ, वो क्लासिक केस स्टडी है।
ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा मांग वाले काम भी पब्लिक क्लाउड पर चल सकते हैं। क्लाउड ने ही बिग डेटा, IoT और AI ML जैसी चीजों को इतने बड़े पैमाने पर संभव बनाया है।
और भविष्य में क्या है, क्या नया आ रहा है?
सर्वरलेस कंप्यूटिंग, FaaS का चलन बढ़ रहा है, जहां आपको सर्वर मैनेज करने की चिंता ही नहीं करनी, बस कोड लिखना है, फंक्शन एज अ सर्विस। कंटेनर, डॉकर और उन्हें मैनेज करने के लिए Kubernetes इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गए हैं। ये एप्लीकेशन को कहीं भी चलाना आसान बनाते हैं।
Kubernetes तो आजकल हर जगह है।
हाँ, एज कंप्यूटिंग भी अहम हो रही है, यानी डेटा प्रोसेसिंग को क्लाउड डेटा सेंटर के बजाय डेटा के स्रोत के नजदीक, जैसे फैक्ट्री या डिवाइस में करना,
लो लेटेंसी के लिए।
बिल्कुल। और जाहिर है एआई और मशीन लर्निंग क्लाउड सेवाओं को और शक्तिशाली बनाएंगे।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं जो हमें याद रखने चाहिए?
सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है आईटी का एक उपयोगिता बन जाना।
हाँ, वो बिजली वाला उदाहरण।
हाँ, कंप्यूटिंग को बिजली या पानी की तरह इस्तेमाल करना, खरीदना नहीं, ये कैपेक्स से ओपेक्स का शिफ्ट सोच और बजट दोनों को बदल देता है।
दूसरा, तकनीक का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन। क्लाउड ने शक्तिशाली तकनीक जैसे सुपर कंप्यूटिंग या एआई मॉडल तक पहुंच को आसान बना दिया है। आज एक छोटा भारतीय स्टार्टअप भी दुनिया की बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकता है, क्योंकि उसे भी वही बेहतरीन टूल और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है।
इससे इनोवेशन में जबरदस्त तेजी आई है।
तीसरा, पर्दे के पीछे का हीरो वर्चुअलाइजेशन। ये समझना कि कैसे ये तकनीक संसाधनों को साझा करना, लचीलापन देना और लागत कम करना संभव बनाती है, क्लाउड को समझने के लिए जरूरी है।
चौथा, और इसे जितनी बार दोहराया जाए कम है, सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
क्लाउड पर जाने का मतलब ये नहीं कि सुरक्षा की चिंता खत्म। प्रदाता अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, पर ग्राहक को अपनी डेटा, एप्लीकेशन और एक्सेस की सुरक्षा खुद करनी होगी। लापरवाही भारी पड़ सकती है।
और पांचवा, इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी से मिलने वाली व्यावसायिक पूर्ति,
एजिलिटी।
बाजार की बदलती मांगों पर तेजी से प्रतिक्रिया देना, नए आइडिया को जल्दी टेस्ट करना, सफल होने पर तुरंत स्केल करना और असफल होने पर कम नुकसान में बाहर निकलना।
हाँ।
ये क्लाउड का एक बड़ा व्यावसायिक लाभ है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
रुपारेलिया के काम में कुछ बहुत यादगार विचार या सूत्र वाक्य भी हैं।
हाँ, जैसे यह कहना कि कंप्यूटिंग को कार की तरह अपनी संपत्ति समझने के बजाय बिजली की तरह उपभोग की जाने वाली चीज समझें।
हाँ।
या उस यूटिलिटी मॉडल को एकदम साफ कर देता है।
बिल्कुल। या सुरक्षा पर ये कि क्लाउड सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी का अनुबंध है। नींव प्रदाता सुरक्षा करता है, लेकिन उस पर बने घर के आप आर्किटेक्टर गार्ड हैं।
वाह, ये बढ़िया कहा। यह ग्राहक की भूमिका को बहुत स्पष्ट करता है।
एक और रणनीतिक सोच वाला वाक्य, सही सवाल ये नहीं कि क्या हमें क्लाउड पर जाना चाहिए, बल्कि कौन सा काम किस क्लाउड मॉडल के लिए सबसे उपयुक्त है।
हाँ, मतलब वन साइज फिट्स ऑल नहीं है।
बिल्कुल। ये दिखाता है कि यह सिर्फ हाँ या ना का फैसला नहीं, बल्कि सोच समझ कर चुनने का मामला है।
और क्लाउड के असर पर, क्लाउड कंप्यूटिंग पर्सनल कंप्यूटर के आगमन के बाद से कंप्यूटिंग प्रतिमान में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
ये बात तो है।
हाँ, ये इसके गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है।
इन विचारों को जरा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ के देखें तो
हम सब रोज क्लाउड इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने में। गूगल ड्राइव पर फाइलें रखना, नेटफ्लिक्स देखना, स्पॉटिफाई सुनना, ये सब क्लाउड की ही देन है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारा डेटा कहाँ है, कितना सुरक्षित है, क्या हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया है।
सही बात है। और भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए तो ये गेम चेंजर रहा है।
हाँ बिल्कुल। कितने ही युवा उद्यमी कम पैसों में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें AWS या GCP पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर किराए पर मिल जाता है। इसने मैदान को काफी हद तक बराबर कर दिया है।
व्यवसायों के लिए सोचिए, दिवाली सेल या किसी बड़े क्रिकेट मैच के दौरान ट्रैफिक संभालने के लिए अतिरिक्त सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं,
क्लाउड इलास्टिसिटी से काम चल जाता है।
हाँ, जरूरत खत्म होने पर स्केल डाउन कर दो, इससे कंपनियां ज्यादा फ्लेक्सिबल और प्रतिस्पर्धी बन पाती हैं।
और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, उनका काम बदल रहा है, अब सिर्फ सर्वर ठीक करना काफी नहीं।
हाँ, स्किल्स बदल रही हैं।
बिल्कुल। क्लाउड आर्किटेक्चर समझना, ऑटोमेशन टूल्स इस्तेमाल करना, सुरक्षा का ध्यान रखना, डेवऑप्स तरीके अपनाना, ये नई स्किल्स जरूरी हो गई हैं।
तो आज की इस बातचीत से आपके लिए सबसे अहम या शायद चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए दो बातें। पहली, वो साझा जिम्मेदारी मॉडल की गंभीरता। ये बात कि सुरक्षा की गेंद पूरी तरह प्रदाता के पाले में नहीं है, यह हर उस व्यक्ति या कंपनी को समझना होगा जो क्लाउड इस्तेमाल कर रहा है या करने की सोच रहा है। आम करने का और बजट बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है, जिसके लिए पूरी संस्था को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को तैयार होना पड़ता है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्लाउड ने कैसे इनोवेशन को डेमोक्रेटाइज किया है।
हाँ, वो लोकतंत्रीकरण वाली बात।
हाँ, छोटे छोटे आइडियाज वाले लोग भी आज बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी वही साधन उपलब्ध है जो बड़ी कंपनियों के पास है। तकनीक का ये लोकतंत्रीकरण वाकई कमाल का है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।